एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
सभी सुनने वालों का स्वागत है हमारी इस ज्ञान गोष्ठी में।
नमस्कार।
आज हम बात करने वाले हैं जॉन रिचेस की एक किताब पर, द बाइबल अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। नाम से ही जाहिर है छोटी सी है, पर है बहुत काम की।
बिल्कुल, और ये विषय ऐसा है जो आज भी कितना जरूरी है। बाइबल को देखें तो दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है। इसने सिर्फ धर्म नहीं बल्कि सोचिए कला, साहित्य, राजनीति,
हाँ, पूरी पश्चिमी सभ्यता को एक तरह से ढाला है और अरबों लोग उनकी जिंदगी का हिस्सा रही है ये किताब।
सही बात है, लेकिन मजे की बात यह है कि इतनी फेमस किताब के बारे में भी बहुत सी बेसिक बातें लोग जानते नहीं हैं, जैसे ये बनी कैसे, क्या ये सच में एक ही किताब है।
हाँ, और इसे पढ़ना कैसे चाहिए, आजकल के टाइम में इसका क्या मतलब निकालें।
बिल्कुल, और यहीं पर जॉन रिचेस की ये किताब काम आती है। ये उन लोगों के लिए बढ़िया स्टार्टिंग पॉइंट है जो बाइबल को सिर्फ एक धार्मिक किताब की तरह नहीं बल्कि एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, एक लिटरेरी पीस, एक कल्चरल लैंडमार्क की तरह समझना चाहते हैं।
और रिचेस का तरीका भी अच्छा है। वो हमें ये सिखाते हैं कि भाई इस पुरानी किताब को आज कैसे समझें। मतलब ना तो आंख बंद करके सब मान लो और न ही बिना सोचे समझे खारिज कर दो।
एक बैलेंस बनाने की बात करते हैं वो।
तो ये जॉन रिचेस हैं कौन, थोड़ा इनके बारे में जान ले।
ये यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में प्रोफेसर एमेरिटस हैं। डिविनिटी एंड बिब्लिकल क्रिटिसिज्म पढ़ाते थे। इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी न्यू टेस्टमेंट, अर्ली क्रिश्चियनिटी और बाइबल की व्याख्या को समझने समझाने में।
और इनकी खासियत क्या है पता है? ये जो मुश्किल अकादमिक बातें होती है ना,
हाँ,
उनको आम पढ़ने वालों के लिए बहुत आसान बना देती हैं। ये सिर्फ इतिहास या धर्म के चश्मे से नहीं देखती, बल्कि साहित्य, समाज, उस जमाने के हालात सबको जोड़कर एक पूरी पिक्चर दिखाती हैं।
सही का।
वो सिर्फ फैक्ट्स नहीं बताते बल्कि उनका मतलब समझाते हैं। वो इस पर बहुत जोर देती हैं कि भाई बाइबल को उसके ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट में देखो, वो प्राचीन भूमध्य सागर का इलाका, उसका माहौल।
हाँ,
लेकिन साथ में ये भी देखते हैं कि आज हमारे लिए इसके क्या मायने हैं। तो एक तरह का बैलेंस्ड व्यू है।
तो ये किताब असल में करती क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये बाइबल की जो जटिल दुनिया है ना, उसका एक तरह से नक्शा देती है।
गाइड मैप जैसा।
हाँ बिल्कुल, इसका मकसद है बताना कि बाइबल शुरू कैसे हुई, कैसे बनी, इसमें कितनी तरह की चीजें हैं और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ा। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको पहले से कोई खास ज्ञान होने की जरूरत नहीं है।
और रिचेस का जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है वो शायद यही है कि जिसे हम द बाइबल कहते हैं।
हाँ, वो असल में किताब है ही नहीं।
अच्छा।
हाँ, ये तो जैसे एक पूरी लाइब्रेरी है। अलग अलग टाइम पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोगों ने जो लिखा, उन सबका कलेक्शन।
हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर दो तरह के एक्सट्रीम व्यूज मिलते हैं। एक तो वो जो हर शब्द को बिल्कुल अक्षरशः सच मानते हैं,
लिटरल इंटरप्रिटेशन वाला।
हाँ, और दूसरे वो जो इसे पूरी तरह बेकार समझकर साइड कर देते हैं। रिचेस कहते हैं भाई रुको, असलियत इन दोनों के बीच में है और ज्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग है।
किताब हमें ये सफर दिखाती है कि हिब्रू बाइबल, जिसे ईसाई पुराना नियम कहते हैं,
हाँ,
और नया नियम, ये बने कैसे। ये कोई एक दिन में टपकी हुई चीजें नहीं थी।
अच्छा, तो कैसे बनी?
सदियां लगी।
हाँ?
अलग अलग कम्युनिटीज ने बहस की,
हाँ?
चुना कि कौन से लेख ज्यादा जरूरी हैं, किन्हें ऑफिशियल माना जाए। इसमें इतिहास है, थोड़ी पॉलिटिक्स भी है, थियोलॉजी है, सब मिला जुला है।
और इसमें है क्या क्या? मतलब कहानियां हैं, कविताएं हैं, कानून हैं, भविष्यवाणियां हैं, चिट्ठियां हैं,
ज्ञान की बातें हैं।
हाँ, और भगवान, इंसान, समाज के बारे में विचार भी बदलते रहे हैं। और ये भी कि अलग अलग टाइम में लोगों ने इसे कैसे समझा और कैसे इस्तेमाल किया।
चलो थोड़ा और अंदर चलते हैं। किताब का पहला ही चैप्टर सवाल पूछता है, बाइबल आखिर है क्या? और पहला जवाब ही, जैसा हमने कहा, चौंकाता है। बाइबल शब्द का मतलब ही है किताबें, ग्रीक वर्ड ता बिब्लिया से।
तो शुरुआत ही प्लूरल से होती है, अनेकता से।
बिल्कुल, और यहीं पर कैनन को कॉन्सेप्ट आता है।
कैनन मतलब कौन सी किताबें इस कलेक्शन का हिस्सा मानी जाएंगी और कौन सी नहीं।
हाँ बिल्कुल वही। और मजे की बात यह है कि अलग अलग परंपराएं हैं ना, यहूदी, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, ऑर्थोडॉक्स, इन सब की ऑफिशियल लिस्ट में थोड़ा थोड़ा फर्क है।
अरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन सी किताब पवित्र मानी जाएगी, ये फैसला भी टाइम के साथ समुदायों ने लिया। कोई ऊपर से फिक्स्ड लिस्ट नहीं आई।
एग्जैक्टली, ये दिखाता है कि कैनन एक हिस्टोरिकल प्रोसेस का नतीजा है। इसमें सहमति बनी, बहस हुई, चुनाव हुए, कोई एक हमेशा से तय लिस्ट नहीं थी।
अच्छा, तो ये किताबें बनी कैसे?
चैप्टर टू पुराने नियम पर है, यानी हिब्रू बाइबल, इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं, मतलब मौखिक परंपराओं में, कहानियां, गाने, नियम कानून जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते थे।
लेकिन फिर इन्हें लिखने की जरूरत क्यों पड़ी?
रिचेस बताते हैं कि बेबिलोनियन निर्वासन, मतलब जब यहूदियों को उनकी जमीन से निकाल दिया गया था 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में।
हाँ, वो एग्जाइल वाला पीरियड।
हाँ,
वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तब अपनी पहचान, अपनी परंपराओं को लिखकर बचाने की जरूरत महसूस हुई।
और ये लिखा भी कैसे गया? क्या एक ही बार में सब लिख दिया?
नहीं नहीं, कई किताबें तो ऐसी हैं जैसे अलग अलग पुराने धागों को लेकर बाद में किसी ने बुना हो। जैसे पहली 5 किताबें हैं जिन्हें टोरा कहते हैं।
हाँ, जेनेसिस, एक्सोडस वगैरह।
हाँ, तो विद्वानों को लगता है कि उनमें कम से कम 4 अलग अलग पुराने सोर्सेज मिले हुए हैं। उन्हें वो JEDP कहते हैं। मतलब भले ही ट्रेडिशनली मूसा को लेखक माना जाता हो, पर असल कहानी शायद ज्यादा कॉम्प्लेक्स है।
ये जानना वाकई दिलचस्प है, मतलब शुरुआत से ही इसमें कई आवाजें थी।
बिल्कुल। और फिर आता है सेप्टुअजेंट। सेप्टुअजेंट ये था हिब्रू बाइबल का ग्रीक ट्रांसलेशन, मिस्र में जो यहूदी रहते थे उनके लिए किया गया था। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो शुरू के ईसाई थे ना,
हाँ,
उन्होंने ज्यादातर इसी ग्रीक ट्रांसलेशन को अपने ओल्ड टेस्टामेंट की तरह इस्तेमाल किया।
अच्छा, अब आते हैं नए नियम पर, चैप्टर 3। इसकी कहानी भी अलग है। जब यीशु थे और उनके शुरू के फॉलोअर्स थे, उनके लिए स्क्रिप्चर या शास्त्र का मतलब तो वही पुरानी यहूदी किताबें थीं।
तो यीशु की बातें कैसे फैली?
पहले तो जबानी ही, कहानियां, उनकी शिक्षाएं, ये सब लोग एक दूसरे को सुनाते थे।
तो सबसे पहले लिखा क्या गया नए नियम में?
चिट्ठियां, प्रेरित पॉल के लेटर्स, जो उन्होंने अलग अलग शहरों में जो नए ईसाई ग्रुप्स बन रहे थे उनको लिखे थे, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में, उनके सवालों के जवाब में। ये शायद 50 AD के आसपास की बात है।
और गॉस्पल्स, मैथ्यू, मार्क, ल्यूक, जॉन,
वो बाद में आए। शायद मार्क का गॉस्पल सबसे पहले लिखा गया 70 AD के आसपास। और हर गॉस्पल का अपना एक अलग नज़रिया है। वो यीशु की कहानी को अपने खास ऑडियंस और अपने थियोलॉजिकल मकसद के हिसाब से सुनाते हैं। ये सिर्फ बायोग्राफी नहीं है।
तो फिर वही सवाल उठा होगा, इतनी सारी किताबें हो गई, चिट्ठियां हो गई, कौन सी असली मानी जाए?
हाँ, 2री-3री सदी में ये बहस बहुत चली। फिर चर्च ने कुछ क्राइटेरिया बनाए, जैसे क्या ये किसी प्रेरित से जुड़ी है, क्या ज्यादातर चर्च इसे मानते हैं, क्या ये जो पहले से मानी हुई बातें उनके हिसाब से है।
काफी सोच विचार हुआ होगा।
बिल्कुल। और आखिर में जाकर 4थी सदी तक आज का जो 27 किताबों वाला नया नियम है वो फाइनल हुआ। तो ये भी एक लंबी कहानी है, कोई झटपट वाला काम नहीं था।
अगला पड़ाव है ट्रांसलेशन का, चैप्टर 4। और रीचेस एक बहुत जरूरी बात कहते हैं, ट्रांसलेशन कभी न्यूट्रल नहीं होता, वो हमेशा इंटरप्रिटेशन भी होता है। मतलब आप कौन सा शब्द चुनते हैं, इससे पूरा मतलब बदल सकता है।
इसका कोई उदाहरण है?
हाँ, एक बहुत फेमस उदाहरण है, यशाया की किताब में एक हिब्रू शब्द है अल्मा। इसका मतलब हो सकता है जवान औरत। जब इसका ग्रीक ट्रांसलेशन हुआ सेप्टुअजेंट में, तो वहां पार्थेनोस शब्द यूज हुआ, जिसका ज्यादातर मतलब कुंवारी होता है।
ओहो।
हाँ, और ईसाई ट्रेडिशन में इस ट्रांसलेशन ने यीशु के जन्म की कहानी की व्याख्या पर जबरदस्त असर डाला।
बाप रे, सिर्फ एक शब्द का इतना बड़ा असर, सोचने वाली बात है।
बिल्कुल। किताब में और भी जरूरी ट्रांसलेशंस की बात है, जैसे जेरोम का लैटिन वल्गेट, जो हजारों साल तक यूरोप में स्टैंडर्ड रहा, फिर वाइक्लिफ और टिंडेल के हिम्मत वाले अंग्रेजी अनुवाद। टिंडेल को तो मार ही दिया गया था इसके लिए।
हाँ, बाइबल को आम लोगों की भाषा में लाना उस समय बहुत बड़ा कदम था।
और किंग जेम्स वर्जन, जिसका अंग्रेजी भाषा और लिटरेचर पर कितना असर है। और आज भी ये बहस चलती है कि ट्रांसलेशन कैसा हो, वर्ड फॉर वर्ड या आइडिया फॉर आइडिया।
फिर आता है चैप्टर 5, बाइबल की आलोचना। अब ये आलोचना शब्द सुन के लगता है कि कोई नुक्ताचीनी हो रही है।
हाँ, नेगेटिव सा लगता है,
पर यहां मतलब वो नहीं है। यहां इसका मतलब है ऐतिहासिक और साहित्यिक नजरिए से जांच पड़ताल करना, एनालिसिस करना।
ये कब शुरू हुआ?
ये ज्ञानोदय के टाइम से ज्यादा जोर पकड़ा, जब लोगों ने सोचना शुरू किया कि भाई बाइबल को सिर्फ आस्था से नहीं बल्कि इतिहास और तर्क की कसौटी पर भी परखा जाए। सवाल पूछना शुरू किया, ये लिखा किसने, कब लिखा, क्यों लिखा, इसके पीछे कौन से सोर्सेस थे, उस टाइम के समाज का इस पर क्या असर पड़ा।
लेकिन क्या इससे लोगों का विश्वास कमजोर नहीं होता? ये सवाल तो मन में आता है।
रुचिज ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं कि ये जो मेथड्स हैं, सोर्स क्रिटिसिज्म, फॉर्म क्रिटिसिज्म, रिडक्शन क्रिटिसिज्म, ये बाइबल को छोटा करने के लिए नहीं है, बल्कि उसकी जो अलग अलग पढ़ते हैं उन्हें खोलने के लिए हैं। ये हमें दिखाते हैं कि बाइबल कितनी मानवीय किताब भी है, जो खास समय खास जगह पर इंसानों ने लिखी। इससे समझ कमजोर नहीं होती बल्कि ज्यादा गहरी होती है, ज्यादा नुआंस्ड होती है।
चैप्टर 6 इस बारे में है कि बाइबल का इस्तेमाल कैसे कैसे हुआ और इसका असर क्या पड़ा, और ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ तो देखो, कला, संगीत, साहित्य सबके लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। माइकल एंजेलो, रेमब्रांड, बाख, मिल्टन, लिस्ट बहुत लंबी है।
हाँ, वेस्टर्न कल्चर पे इसका असर तो दिखता ही है।
लेकिन इसका इस्तेमाल राजनीति और समाज में बिल्कुल उल्टे मकसदों के लिए भी हुआ है।
अच्छा।
जैसे? मतलब इससे राजाओं के दैवीय अधिकार को सही ठहराने के लिए भी यूज किया गया, और क्रांति का बिगुल बजाने के लिए भी, गुलामी को जस्टिफाई करने के लिए भी, और गुलामी खत्म करने के जो आंदोलन थे उनको ताकत देने के लिए भी।
अरे वाह, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट बात है।
हाँ, पितृसत्ता को सपोर्ट करने के लिए भी इसके हवाले दिए गए, और फेमिनिस्ट आवाजों को उठाने के लिए भी।
ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स तस्वीर है।
बिल्कुल। रिचेज लैटिन अमेरिका की लिबरेशन थियोलॉजी का उदाहरण देती हैं, जहां बाइबल को गरीबों और शोषितों के नजरिए से पढ़ा गया, एक मुक्ति के संदेश के तौर पर। तो ये दिखाता है कि मायने फिक्स नहीं होते, उन्हें कैसे पढ़ा जा रहा है ये बहुत मायने रखता है।
और जो आखिरी चैप्टर है, चैप्टर 7, वो एक बहुत मुश्किल सवाल उठाता है कि भाई, अगर बाइबल इतनी मानवीय किताब है जिसे इंसानों ने लिखा, चुना, एडिट किया, ट्रांसलेट किया, तो फिर ये पवित्र, सेक्रेट कैसे हुई?
हाँ, ये सवाल तो आएगा ही मन में। इसका क्या जवाब देते हैं रिचेज?
वो कहते हैं कि शायद इसकी पवित्रता इस बात में नहीं है कि ये वर्ड फॉर वर्ड बिल्कुल सच है या सीधे भगवान ने बोलकर लिखवाई है।
तो फिर किस में है?
शायद इस बात में है कि ये विश्वास करने वाले समुदायों के लिए क्या करती है। ये उन्हें मीनिंग देती है, पहचान देती है, भगवान से जुड़ने का एक रास्ता बनती है। जिन कम्युनिटीज ने इसे अपना कैनन बनाया, उनका ये चुनाव ही इसे एक तरह की पवित्रता देता है।
मतलब पवित्रता उसके फंक्शन में है, उसके इस्तेमाल में है।
हाँ, कुछ ऐसा ही। तो इसका मतलब हुआ कि क्रिटिकल तरीके से सोचना और विश्वास रखना, ये दोनों साथ साथ चल सकते हैं।
बल्कि रिचेज तो ये कहते हैं कि एक आलोचनात्मक, ऐतिहासिक समझ शायद ज्यादा मच्योर, ज्यादा मजबूत विश्वास पैदा कर सकती है। ऐसा विश्वास जो मुश्किल सवालों से या बाइबल के उन हिस्सों से जो हमें अजीब लगते हैं उनसे घबराता नहीं है।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ मोटी मोटी बातें क्या निकल कर आती हैं? मेरे लिए तो सबसे पहली और जरूरी बात यही है कि बाइबल एक लाइब्रेरी है, एक किताब नहीं। यह रट लेना चाहिए। इसमें बहुत वैरायटी है, अलग अलग आवाजें हैं। इसे एक ही नजरिए से देखना सही नहीं।
हाँ, और ये हमें सिखाता है कि किसी भी बड़े आइडिया या टेक्स्ट को उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में समझना कितना जरूरी है। दूसरी अहम बात, ऐतिहासिक संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। ये किताबें आज के लिए नहीं लिखी गई थीं।
सही कहा।
उन्हें समझने के लिए उस जमाने के समाज, उनकी सोच, उनकी भाषा को ध्यान में रखना ही होगा, वरना हम आज के चश्मे से देखकर कुछ का कुछ मतलब निकाल लेंगे।
बिल्कुल, जैसे हम अपने पुराने ग्रंथ या दस्तावेज पढ़ते हैं तो भी तो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं ना।
तीसरा, व्याख्या कभी रुकती नहीं। हर ट्रांसलेशन, हर रीडिंग एक नई इंटरप्रिटेशन है। मायने बदलते रहते हैं टाइम के साथ, पढ़ने वाले के साथ। जैसे हमारे यहाँ रामायण महाभारत की कितनी व्याख्याएं होती आई हैं और हो रही हैं। हाँ, अर्थ कोई जमी हुई चीज नहीं है। चौथा, जिसे हम डिवाइन मानते हैं, उसमें भी इंसान का हाथ साफ दिखता है। लिखना, एडिट करना, चुनना, ये सब इंसानी काम थे। इनमें उस समय की जरूरतें, बहसें, शायद पावर स्ट्रगल्स भी शामिल थे।
ये हमें अपनी परंपराओं को भी इसी तरह देखने की चुनौती देता है।
बिल्कुल। और पांचवों, बाइबल की विरासत मिली जुली है, विवादित रही है। इसने अच्छे कामों को भी प्रेरित किया है और बुरे कामों को भी सही ठहराया है। ये एक रिमाइंडर है कि पावरफुल कहानियों का इस्तेमाल कैसे भी हो सकता है, हमें अलर्ट रहना होगा।
रिचेज की किताब क्योंकि वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, तो उसमें लंबे लंबे कोट्स तो नहीं है, पर उनके कुछ मेन आइडियाज बार बार आते हैं।
हाँ, जैसे पहला आइडिया, जिसका सार ये है, बाइबल एक किताब नहीं बल्कि एक पुस्तकालय है। अलग अलग सोच और नजरिए वाले लेखकों ने सदियों में इसे लिखा है। ये डाइवर्सिटी वाली बात बहुत पावरफुल है।
हाँ, ये हमें आसान जवाबों से आगे सोचने को कहती है। दूसरा आइडिया, इसे ऐतिहासिक रूप से पढ़ें, जैसे ओरिजिनल लेखक और ऑडियंस का मतलब था, न कि सिर्फ अपने आज के विचारों को सही साबित करने के लिए। ये एक जिम्मेदार रीडिंग की बात है, टेक्स्ट की इज्जत करने की बात है।
तीसरा विचार भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसकी अथॉरिटी शायद अचूक होने में नहीं बल्कि सदियों से नई सोच जगाने और हमारी बनी बनाई धारणाओं को चैलेंज करने की ताकत में है। मतलब अथॉरिटी का मतलब ये नहीं कि सवाल नहीं पूछ सकते, बल्कि ये कि वो हमें सोचने पर मजबूर करती है।
हाँ, एक लिविंग डायलॉग पैदा करती है। और चौथा, इसकी जो आज भी रेलेवेंस है वो शायद रेडीमेड जवाब देने में नहीं, बल्कि जिंदगी के जो बड़े सवाल हैं, न्याय, दुख, मीनिंग, उनसे ईमानदारी से जूझने में है। ये बाइबल को एक साथी जैसा दिखाता है जो मुश्किल रास्ते पर सोचने में मदद करता है, ना कि सिर्फ डेस्टिनेशन बताता है।
तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या असर हो सकता है? कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं?
हाँ बिल्कुल। पर्सनल लेवल पर देखें तो ये हमें किसी भी धार्मिक या जरूरी टेक्स्ट के साथ ज्यादा समझदारी से जुड़ने में मदद कर सकता है। हम फर्क करना सीख सकते हैं कि कहाँ पर उस टाइम की बातें हैं और कहाँ पर गहरे यूनिवर्सल मैसेज हो सकते हैं।
जैसे वो उत्पत्ति वाली कहानी का उदाहरण था, उसे साइंस न मानकर क्रिएशन पर एक गहरा विचार मानना।
एग्जैक्टली। और समाज के लेवल पर
देखिए, इससे हमारी कल्चरल लिटरेसी बढ़ती है। वेस्टर्न आर्ट, लिटरेचर, लॉ को समझने के लिए बाइबल का थोड़ा आइडिया होना जरूरी है, और साथ ही ये अलग अलग विश्वासों के लोगों के बीच डायलॉग का एक बेहतर बेस बना सकता है, क्योंकि तब हम हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर बात कर सकते हैं, सिर्फ अपनी अपनी आस्था पर अड़े नहीं रहेंगे।
और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, ये सीखना कि किसी भी टेक्स्ट के पीछे क्या इरादे हो सकते हैं, कौन से सोर्सेज हैं, क्या बायस हो सकता है, ये हुनर तो आज की दुनिया में, मतलब मीडिया से लेकर पॉलिटिक्स तक, हर जगह काम आता है।
इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि बाइबल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसका जो मानवीय इतिहास है, वो उसे कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे और ज्यादा रिच और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। उसे सिर्फ एक रहस्यमयी किताब की तरह देखने के बजाय इतिहास और संस्कृति के प्रोडक्ट की तरह देखना ज्यादा फ्रूटफुल है।
और मेरे लिए ये कि आलोचनात्मक नजरिया और सम्मान साथ साथ चल सकते हैं। किसी चीज को गहराई से समझना, उसके बनने की कहानी जानना, उसके लिए इज्जत को कम नहीं करता, शायद बढ़ाता ही है। ये हमें किसी भी विचार या परंपरा के साथ ज्यादा ईमानदारी से जुड़ने का रास्ता दिखाता है।
और यहाँ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए, कि अगर हम यही नजरिया, ये ऐतिहासिक, ये आलोचनात्मक नजरिए से देखना जो हमने बाइबल के बारे में बात करते हुए देखा, इसे सिर्फ पुरानी धार्मिक किताबों पर नहीं, बल्कि अपनी आज की संस्कृति पर, अपने समाज की मान्यताओं पर, अपनी राष्ट्रीय पहचान से जुड़ी कहानियों या तथाकथित पवित्र विचारों पर लागू करें, तो क्या परतें खुलेंगी, क्या नई समझ मिलेगी, क्या मुश्किलें आएंगी?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।